हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दरअसल कबीर ने खुद से वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला किया था क्योंकि उसे प्यार में एक बहुत ही तगड़ा धोखा मिला था। उसके बाद से उसने ये डिसीजन ले लिया था कि वो जिंदगी में कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा और ना ही किसी से शादी करेगा। पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने का उसने आह्वान कर लिया था। इसी सोच के साथ उसने तुरंत अनामिका से दूरी बना ली थी और बोला था, देवी जी, अब प्लीज आइंदा हमारे इतने करीब आकर हमें कुछ मत बताइएगा। ये बोलकर कबीर बिना रुके वहां से निकल गया। वहीं अनामिका पूरी तरह से चौंक गई थी। वो सोचने लगी थी कि वो इस तरह से क्यों बोलकर चला गया, जैसे मैं उसके बहुत करीब चली गई हूँ और मैंने उसके किसी छुपे हुए रहस्य को तोड़ दिया हो। थोड़ी देर बाद वो झलक के पास जाकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम इस तरह के फैंसी मॉडल कपड़े नहीं खरीदने वाली हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ज़रूर शॉपिंग करूँगी। वक्त पड़ने पर तुम पहन भी सकती हो। और हाँ, ये देखो, ये वाले कपड़े कितने बेस्ट हैं यार। ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में वो ड्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। झलक उसे देख तो रही थी, लेकिन वो चेंज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अब आदित्य राणा मॉल में पहुंच चुका था। दरअसल उसकी एक बेहद इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस मैनेजर के साथ, इसीलिए वो वहाँ आया हुआ था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ की मैनेजर मिस शालिनी गुप्ता पहले से ही आदित्य का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शालिनी ने आदित्य को देखा, वो उसे देखते ही रह गई। शालिनी काफ़ी ज़्यादा तेज़, समझदार और कॉन्फिडेंट लड़की थी, जिसकी वजह से उसे इंडस्ट्रीज़ का मैनेजर बनाया गया था। सारी मीटिंग्स, इम्पॉर्टेंट फ़ैसले और फ़ैसिलिटी से जुड़े निर्णय उसी से कंसल्ट करने के बाद ही अप्रूव किए जाते थे। दादाजी को उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। हालांकि शालिनी को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि दादाजी की असल में एक नहीं बल्कि दो पोतियां भी हैं और वे कैसी दिखती हैं। उसे लगता था कि दादाजी ही शुरू से पूरा बिज़नेस संभालते आए हैं और बिज़नेस के नाम पर वो कभी कभार ही इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। ज़्यादातर फ़ैसले वही लेते थे और डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी उन्हीं के कहने पर हो जाते थे। धीरे धीरे शालिनी खुद को ही इंडस्ट्रीज़ का मालिक समझने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उससे ऊपर अब कोई है ही नहीं। फिलहाल आदित्य की पर्सनालिटी, उसका रहन सहन और बात करने का तरीका देखकर शालिनी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। बड़ी ही शालीनता और प्रोफेशनल अंदाज में उसने आदित्य से मुलाकात की। उधर आदित्य का मूड झलक की वजह से थोड़ा खराब जरूर था, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ था। वो बहुत कम ही अपने एक्सप्रेशन जाहिर करता था। फटाफट मीटिंग से जुड़ी सारी बातें डिस्कस करने और ज़रूरी फ़ैसले लेने के बाद आदित्य ने शालिनी को लंच का ऑफ़र भी दिया। चूंकि आदित्य राणा लंच करने वाला था, इसीलिए उसने पूरा का पूरा फूड कोर्ट बुक कर लिया था। मीटिंग खत्म होने के बाद शालिनी आदित्य से बोली, आज तक आपके बारे में सुना था कि आप फ़ोन के ज़रिए ही अपने बिज़नेस को एक्सेस करते हैं और उसके बाद अचानक आकर फ़ैमिली बिज़नेस संभाल रहे हैं। इनफैक्ट मल्होत्रा के बाद अगर किसी का नाम बिज़नेस की दुनिया में लिया जाता है तो सिर्फ आपका ही लिया जाता है। रियली, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े एम्पायर हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, थैंक यू मिस गुप्ता, लेकिन आपकी तारीफ भी कम नहीं है। इतनी कम उम्र में आपने पूरी इंडस्ट्री को जिस तरह से संभाल रखा है वो वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल आदित्य किसी भी कंपनी के साथ काम करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च कर लेता था। उसे अच्छी तरह से पता था कि इंडस्ट्री में शालिनी की कितनी अहमियत है। साथ ही उसे ये भी पता था कि शालिनी के अंदर का अहंकार धीरे धीरे बाहर आने लगा है। उसे ये भरोसा हो चला था कि अगर दिग्विजय जी की मौत भी हो जाती है तो उसके बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पूरी तरह से उसी की हो जाएगी, क्योंकि उसके अलावा किसी और चेहरे को इंडस्ट्री पहचानती ही नहीं थी। उधर दादाजी फिलहाल बिजनेस से थोड़ा दूर रहकर अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। उन्होंने इस बात को जरूरी नहीं समझा था कि अभी अपनी पोतियों को बिजनेस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया जाए। शालिनी अब आत्मविश्वास से भरे लहजे में बोली, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं मिस्टर राणा। इंडस्ट्री में मेरे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, सब कुछ मेरे ही हाथों में है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ये जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे तो ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। शालिनी की बातें सुनकर आदित्य को काफ़ी अच्छा लगा था। उसकी पर्सनैलिटी और उसका प्रोफेशनल अंदाज आदित्य को सच में पसंद आया था, क्योंकि वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से बातें कर रही थी। आदित्य को शुरू से ही इंडिपेंडेंट वुमेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया करती थी। फिलहाल जल्दी ही आदित्य ने शालिनी को ऑफर किया कि वो फटाफट से अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। वहीं दूसरी ओर झलक ने वो ड्रेस ट्राई तो कर ली थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तब अनामिका सीटियां मारते हुए बोली थी, अरे मेरी जान, तो इसमें कितनी प्यारी लग रही है। सच में अगर मैं लड़का होती ना तो मैं तुझसे ही शादी कर लेती और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। ये सुनकर एक पल के लिए झलक के गाल हल्के से लाल हो गए थे, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। तभी काफ़ी सारी शॉपिंग हो चुकी थी। अनामिका ने रैंडम जो भी कपड़े पसंद आए थे वो सारे ले लिए थे। थोड़ी देर बाद उसके पेट से कुछ बोलने जैसी आवाज आने लगी थी। वो हंसते हुए बोली, लगता है अब बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। मैंने सुना है यहाँ का फूड सेक्शन काफी अच्छा है, वैसे भी यहाँ की बहुत तारीफ सुनी है, चलो ना फटाफट चलते हैं। ये बोलकर उसने झलक का हाथ लगभग खींच ही लिया था और दोनों फटाफट वहां के वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ गई थी। वो वही जगह थी जो पहले से ही आदित्य राणा ने बुक कर रखी थी। वहां उस वक्त कोई गार्ड मौजूद नहीं था जिसने उन्हें ये बताया होता कि पूरा का पूरा सेक्शन पहले से बुक है। इसी वजह से दोनों आराम से अंदर चली गई थीं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, चारों तरफ की खामोशी और पूरा का पूरा खाली एरिया देखकर वे चौंक गई थीं। अनामिका तुरंत झलक देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पूरा स्पेस खाली क्यों है? मैंने तो सुना था कि यहाँ हमेशा अच्छी खासी भीड़ रहती है, वैसे भी इस टाइम पर तो यहाँ लोग आते ही हैं। ये सुनकर झलक ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और बोली, आई थिंक हम तो खाना ऑलरेडी लेकर आए हैं ना, गाजर का हलवा, तुम वही खा लो, वैसे भी मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है, फटाफट यहाँ बैठो खाओ फिर उसके बाद चलते हैं। ये सुनकर अनामिका तुरंत बोली, नहीं नहीं, गाजर का हलवा तो मैं इसलिए ले आई थी ताकि दादाजी हमें इस बात के लिए ना डांटे कि हम बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब कर लें, और अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करेंगे तो तुम जानती हो दादाजी कितना लेक्चर देते हैं, तुम जानती हो कितने दिनों से मैंने फास्ट फूड नहीं खाया है, मेरा इरादा ढेर सारा फास्ट फूड खाने का है, वो जोश में बोलती चली गई। देखो मैं पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज सब ऑर्डर करने वाली हूँ, सोचो कितना मजा आएगा, और प्लीज दादाजी को बस यही बताना कि मैंने सिर्फ गाजर का हलवा ही खाया है। अनामिका की शरारती बातें सुनकर झलक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हें गाजर का हलवा इसलिए लिया था ताकि उसकी आड़ में तुम इतना सारा कूड़ा कचरा खा सको? अनामिका जिद करते हुए बोली, मैं वही खाना चाहती हूँ क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं कितने दिनों से इस तरह के फास्ट फूड के लिए तरस रही हूँ, दादाजी मुझे हेल्दी खाने के अलावा कभी कुछ उल्टा सीधा खाने ही नहीं देते। वो आगे बोली,
अकादमी में देखा है ना हमें कितना लिमिटेड खाना मिलता था, और तुम तो महान हो, घर आकर भी हेल्दी खाना ही शुरू कर दिया, लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैं अब ये सब जरूर खाने वाली हूँ, अपना पेट भरकर फास्ट फूड खाऊंगी और बाकी सब घर के लिए पैक करा कर ले जाऊंगी, और तुम मुझे बचा लेना कि अरे भाई अब तो मैं तुम्हारे नाम पर ही सब कर रही हूँ।